Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Gayatri Mantra mein usse kya kaha? Bhargo. Kya naam diya? Bharg. और वर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्ज धातु वर्ग धातु दोनों एकार्थक हैं, इसलिए वहां बनता है भर्जयति भर्गयति इति भर्ग। तो वर्ज माने भूंजना, वर्ज माने भूंजना, इसलिए शब्द बनता है भोरजी है, जो अन्न को भूनते हैं तो उन्हें क्या कहते? भोरजी। क्यों? क्योंकि वो अन्न को भूंज देते, और जो अन्न भून दिया जाता है तो उसका आवरण जो है वो समाप्त हो जाता, माने फट जाता, और आवरण फट करके उस आवरण में रहने वाला जो है वो क्या होता, उसके अंदर एक फुलावट आ जाती, खिलावट आ जाती, वो खिल जाता, और उसमें है चना जब भून देते तो पेट भर एकदम निकल आता, और क्या होता है स्वाद भी उसका बढ़ जाता, लेकिन स्वादिष्ट हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है, ये सब तो हो जाता, लेकिन उसमें अंकुर नहीं होता, उसको यदि बोना चाहो तो पुनः अंकुर। ठीक इसी प्रकार से आदित्य लोक में जब पहुंच जाता है, आदित्य में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती, ऐसे ज्ञान रूप में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, तो क्या होता है? तो कहा वहां पर उसके आवरणों का नाश हो जाता। अब जब आवरण का नाश हो गया तब उसका पुनः जन्म और मरण नहीं होता, वहां से उसके जन्म मरण की स्थिति हट जाती है, इसलिए यहां संग उसे कह दिया भर्गो, अर्थात जन्म मरण भी नहीं होता है, और जब तक उसकी स्थिति रहती है तब तक भुने हुए चने की तरह से स्वादिष्ट और मस्त रहता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है, या जीवन मुक्त इसको भी कह सकते हो, है ना। तो अब उसकी स्थिति तो दिखलाई दे रही है लेकिन उसमें जन्म मरण नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें से द्वंद्व नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? द्वंद्व, या उसमें से पक्ष नष्ट हो गया है, जैसे संपाति कहां गया? का सूर के पास गए, और सूर के समीप जैसे ही पहुंचा तो क्या हुआ? दोनों पक्ष उसके जल गए, और दोनों पक्ष जल गए तो कैसा हो गया? निष्पक्ष हो गया। कैसा हो गया? निष्पक्ष। ठीक इसी प्रकार से यहां पर पहुंचते ही वह कैसा हो जाता है? तो कहा पक्षों से द्वंद्वों से रहित हो जाता है, और द्वंद्वों से रहित होकर के पक्षों से रहित होकर के प्रकाश स्वरूप हो जाता है। अब उसमें जब कोई पक्ष नहीं रह गया, कोई द्वंद्व नहीं रह गया, तो न पाप रह गया न पुण्य रह गया, और पाप पुण्य को लेकर के ही ये जन्म और मरण की तो ये सब समाप्त हो जाते हैं, यहां तक उसकी स्थिति होती है। और यहां से जब क्रम से आगे चलता है तब उसकी मनोमयता ही वहां समाप्त हो जाती, वहां पर जाके क्या होता? ये मनोमयता समाप्त, तब उस ब्रह्म का ही अनुग्रह कह दो, माने वो अपने ही स्वरूप को प्राप्त होता है, और वहां पर जाके महानाम की व्याहृति है उसमें स्थित होता है, और वो महानाम की व्याहृति क्या है? तो उसी को ब्रह्म शब्द से कहा, उस ब्रह्म में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती। ये संकेत लिया। अब ये शास्त्र का ऐसा यहां पर अर्थ है, इसको एक लोक की भाषा से, कल्पना की भाषा से हम लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों का जीवन कहां है? का स्वप्न के अंदर ही है, और स्वप्न में जो है कितना भी उपदेश दिया जाए, कुछ भी हो, लेकिन स्वप्न में जब तक जागृत में नहीं आता तब तक स्वप्न के पदार्थ असत्य है ना, ये होता। लेकिन फिर भी स्वप्न झूठ होते हुए भी स्वप्न को सच्चा माना जाता, कब तक माना जाता? स्वप्न काल में। स्वप्न झूठा है, लेकिन स्वप्न काल में स्वप्न झूठा नहीं। और वेदांतियों की दृष्टि से जागृत भी झूठा, लेकिन जागृत भी झूठा होते हुए जागृत झूठा जो है झूठे का बाद करता, झूठे के द्वारा झूठे का बाद होता, ये देखा जाता। तो वैसे ही कल्पना में लेकर के जगत में भी ये युक्तियां जो हैं वो भी काल्पनिक ही तो हैं। तो यहां पर भी हम कल्पना करें और उस कल्पना को लेकर के चलें तो समझ में आना चाहिए। एक बार कल्पना ही कर रहा, चारों दिशाओं से अलग अलग दिशा से और चार संत आए जिनमें किसी भी प्रकार की एकता नहीं थी, सबके ढंग अलग अलग थे, निराले ढंग थे और अलग अलग दिशाओं से आए, लेकिन अलग अलग दिशाओं से आकर के वो कहीं एक जगह आकर के एकत्रित हो गए, उनका संयोग हो गया। अब जब संयोग हुआ वहां पर तो एक है बढ़िया कोई वट वृक्ष आदि होगा, उसके नीचे आकर के वहां पर रुक गए। रुक गए तो अब जो है विश्राम करना था वहीं, तो चारों जब वहां से अलग अलग आकर के मिले तो वहीं पर चारों ठहर गए, और चारों जब ठहर गए तो फल कंद आदि वहां से खोजे और फलों को उन्होंने जो है ग्रहण किया सुधा निवृत्ति के लिए। कंद आदि जो थे उनको उन्होंने भूनना प्रारंभ किया और भून भान करके उनको भी ग्रहण करके फिर उन्होंने जो है लकड़ी आदि तोड़ी और अग्नि जलाई और धूना रमा करके चारों वहीं पर चारों तरफ बैठ और चारों चारों दिशाओं के ही रूप में बैठ गए। जब बैठ गए तो बैठ करके जब धुनी रमने लगी बैठ गए और बैठ करके परस्पर आपस में चर्चा करने लगे। और क्या चर्चा करने लगी, कहने लगे देखो भाई जब सामाजिक लोग एकत्रित होते हैं तो समाज की चर्चा करते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं या जो है बिजनेस की चर्चा करते हैं, इस प्रकार से चर्चा अपनी करते। विद्यार्थी एकत्र तो होते हैं तो अपनी विद्या संबंधी चर्चा करते। हम लोग भी चारों चारों दिशाओं से अलग अलग आए हुए हैं, अलग अलग हम लोगों के रूप ढंग हैं, एक से रूप ढंग नहीं है और हम चारों यहां पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों से कुछ विलक्षण हैं क्योंकि उन सारी स्थितियों से हम लोग जो है मैंने प्रत्यक्त हो चुके हैं या उनका परित्याग कर दिया है और हम लोग जो है मुड़ मुड़ा करके घूम रहे हैं। तो इस मुड़ मुड़ा करके घूमने से हम लोगों ने क्या अनुभव किया, इसकी चर्चा हम लोगों को भी करनी चाहिए। ऐसी चर्चा की कहा बात तो ठीक, अपने अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए, क्या अनुभव प्राप्त हुआ इस त्याग के द्वारा मुड़ मुड़ा करके घूमने से क्या अनुभव हुआ। कहा ठीक, तो एक जो संत था उसने बोलना प्रारंभ किया कि भाई आप लोग देखते हो हमारे पास यह गूदड़ी है। क्या कहा उसने, हमारे पास यह गूदड़ी है, इस गूदड़ी को देखते हो इसमें भिन्न भिन्न रंगों के चीथड़े जो है विद्यमान है, सब कोई काला है कोई नीला है कोई पीला है कोई श्वेत है, अनेक प्रकार के रंगों के हैं और उसमें भी कोई रेशमी है तो कोई ऊनी है कोई सूती है कोई जो है ठहरी काट है कोई टेरालिन है, है इस प्रकार से जो है नाना भिन्न भिन्न प्रकार के और जो है ये जो है चीथड़े इसमें हैं और उसमें भी कोई नया है कोई पुराना है और वो सारे के सारे इसमें संयुक्त। आप जानते हो इन सबको मैंने जगह जगह से चुना है और जगह जगह से चुनकर के एकत्रित किया और एकत्र करके उनको सिल दिया मैंने, उन्हें संयुक्त कर दिया, उनको एक कर दिया और एक कर करके हमने यह गुदड़ी। अब ये गूदड़ी जो है हमारे शीत को दूर करने का काम करती है, हमको शीत लगने नहीं देती और संसार के लोग हमको गुदड़ी वाले बाबा कहते, तो हम गुदड़ी वाले बाबा कहलाते। अब गुदड़ी वाले बाबा तो कहते हैं, लेकिन गुदड़ी का अर्थ क्या है वो समझते हैं कि नहीं समझते, ये अलग बात है। लेकिन मैं इस गुदड़ी के अर्थ को समझता हूं, और इस गुदड़ी का अर्थ क्या है उसने बतलाया। कहा, मैंने बड़े कष्ट से, बड़े परिश्रम से, प्रयत्न के द्वारा इन सारे के सारे विलक्षण विलक्षण वस्त्रों को चयन किया, चीथड़ों का चयन किया, और चयन करके उनको एक किया, और एक किया तो अब मुझे जो है इससे शीत भी नहीं लगता, और दूसरे मैं अब इस गुदड़ी को लेकर के निर्भय भी हूं। क्या कहा? मैं इस गुदड़ी को लेकर के निर्भय भी। कहा, निर्भय भी हो, निर्भयता ये गुदड़ी कैसे दिला रही? कहा, इसे कोई चोर कभी चुरा सकता नहीं। अब ऐसा कहते हुए उसने कहा, इसका मतलब क्या है? तो उन आपस में चर्चा कर रहे उन संतों से, कहा, इसका मतलब ये है कि मैंने जो है ये संसार भी विभिन्न प्रकार का है, संसार में भी इसी प्रकार से नानात्व, जितने भी पद पदार्थ हैं, चाहे जड़ हो चैतन्य हो, सारे पदार्थों में पृथकता है, लेकिन उन सारे पदार्थों को मैंने एक कर लिया है। क्या किया है? एक कर लिया। मैं उन्हें अनेकों में अब नहीं रख रहा हूं, मैंने उनको सिल दिया है, एक कर लिया, इसलिए सबको मैं एक दृष्टि से देखता हूं। क्या कर लिया? एक कर लिया, एक दृष्टि से देखता हूं, और एकत्व उसमें है, और इसलिए अब एकत्व होने के कारण अब एक में जो दूसरा कोई हो तो चोरी हो, अब दूसरा कोई है ही नहीं तो चोरी कहां से? और ऐसा इसलिए यह सारा संसार क्या है? कहा, एकमात्र है, और ऐसा हमें ज्ञान है, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म है। क्या है? कहा, यह सब क्या है? प्रज्ञान ब्रह्म मात्र ही है, ऐसा कहकर। और उसने कहा कि भाई, हमने जो कहा वो ठीक है। उन तीनों ने तालियां बजा दी, वाह वाह, क्या कहना, बहुत अच्छा आपका अनुभव। अब जो है उसके अनुभव को सुन करके दूसरा साधु, उसका नंबर आया, उसने कहा, हम भी अपना अनुभव सुनाते। उसकी लंबी लंबी जटाएं थी, चिमटा था, शरीर में भस्म लगाए हुए था, और कौपीन पहने हुए था, क्योंकि चारों दिशाओं से आए थे, चारों विलक्षण थे। अब जो है उसने अपने अनुभव को सुनाया और कहने लगा कि देखो, ये आश्रमी चिन्ह तुम मेरे में देखते हो, ये जो आश्रम के चिन्ह मेरे अंदर हैं, इन चिन्हों को आप देखते हो, यद्यपि ये सारे चिन्ह मेरे में दिखलाई देते हैं, लेकिन मैं बगैर चिन्ह वाला हूं। मैं कैसा हूं? मैं तो बगैर चिन्ह वाला हूं, लेकिन सारे चिन्ह तुम मेरे में देख, लेकिन इन चिन्हों का मतलब तुम समझते हो, इन चिन्हों से मैं असंग रहता हुआ, इन चिन्हों से मेरा कोई संबंध न होता हुआ, फिर भी मैं इनको धारण किए हूं, और किस लिए धारण किए हूं, इनका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य आप समझते हो? कहा, बतलाओ। कहने लगे, इसका तात्पर्य यह है, आप जो मेरे हाथ में चिमटा देखते हो, ये चिमटा जो है वो क्या है? तो चिमटे में दो है होते, तब वो आवाज करते, ध्वनि करते। कहा, ये जो चिमटा जो है वो अभ्यास और वैराग्य की पंखुड़ियों वाला है। चिमटा धारण करने का मतलब है, ये चिन्ह जो है वो किसका प्रतीक है? कि मैं निरंतर अभ्यास में रत रहता हूं और वैराग्य से युक्त रहता हूं, कहीं पर भी आसक्ति नहीं रखता, इसका प्रतीक है। दूसरे लंबी लंबी जटाएं देख रहे हो ना, ये जटाएं किसका प्रतीक है? तो कहने लगे, जो शीर्ष कपाल और वहां पर जो जटाओं का मूल भाग, और उस मूल भाग से है चीर करके जो निकलना, ये जो ब्रह्मज्ञानियों के लिए चर्चा की, योगियों के लिए चर्चा की, और परमात्मा ने भी प्रवेश किया तो वही मूर्धा है, मूर्धानम विदार्य, ये संकेत किया। और ये जटाएं हमारी जो है वहां से उस शीर्ष कपाल से ऊपर जाकर के, और कहां पर है? अंतरिक्ष में ही है। तो ये जटाएं हमारी किसका प्रतीक है? ऊर्ध गति का, अर्थात उसमें प्रतिष्ठा का, वायु में प्रतिष्ठित होने का, इसका ये प्रतीक। हमारी जो है उन्नयनता सदैव उदय रहती है, इसका प्रतीक ये हमारी जटाएं। और कहने लगा कि ये देखते हो शरीर में रमी हुई जो विभूति है, भस्म है, राख, ये किसका प्रतीक है? तो संकेत किया, भस्मांतम शरीरम भाई अनिल मतम वेदम करके, जो वहां ईसावास में पढ़ते हो अंत में, है भस्मांतम शरीरम, इसमें जो वायु है, अग्नि है, ये जो कुछ भी है, ये सब क्या होता? भस्मांत, जब भस्म हो जाता, भस्मांतम शरीरम, और कृतो स्मर कृतो स्मर आदि करके वहां संकेत किया। तो अब जो है ये सब क्या है? मतलब जो कुछ करना कराना, जिसके द्वारा होना, वो सब क्या हो जाता है? कहा अंत में सब राख हो जाते हैं। सबका अंतिम आश्रय और आदि आश्रय क्या है? कहा राख ही है। सबका मूल जो है, सबका अधिष्ठान जो है, वो राख ही है। और मैंने भी यही देख लिया है कि सबका जो है अंतिम स्थल जो है राख है। इसलिए मैं समझता हूं कि सारी दुनिया क्या है? तो राख ही ओढ़न, राख बिछाना है, राख ही ओढ़ना है, राख ही बिछाना है, और राख में ही लय होना, उससे अलग गति नहीं। तो सारी की सारी स्थिति उसी राख से है, और उस अंतिम आश्रय को ही मैं जो है अपने में धारण की, और इसी में हमेशा अपनी निष्ठा रखता हूं। तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि करके उसने कहा, और सबने तालियां बजाई, बहुत अच्छा अनुभव। अब तीसरा साधु जो था, तीसरी दिशा से आया था, उसने कहा अच्छा हम भी अपना अनुभव सुनाते। कहा सुनाओ। उसने कहा कि मुझे देखते हो, अवधूत वेश में था, निर्वस्त्र नग, मुझे देखते हो, लोग मुझे नंगा बाबा कहते, और उनका कहना कहीं तक ठीक भी है, मैं नंगा भी हूं, लेकिन नंगा किससे हो? तो कहने लगे वस्त्र रूपी उपाधि से। तो वस्त्र रूपी उपाधि अर्थात जितनी भी संसार की उपाधि है, उन सारी उपाधियों का मैंने त्याग कर दिया, किसी भी उपाधि को मैं धारण नहीं, किसी उपाधि में अब मेरा रस नहीं है, किसी भी उपाधि में मेरी आसक्ति नहीं, मैं सारी उपाधियों से रहता हूं। और शरीर रूपी उपाधि है, लेकिन इस शरीर रूपी उपाधि में भी अब मेरी आसक्ति नहीं। ये तो उपाधि है, उपाधि को समझ कर मैं जो है अपना वितरण कर रहा हूं। इसलिए ये सब जो है क्या है? तो कहा केवल उपाधि से उपहित जो है वही मूल सत्ता है, और वही क्या है? वही तत्व है, और वही मैं भी हूं, और वही तुम भी हो, तत्त्वमसि। ये सब संकेत कर दिए। कहा ठीक कहा मैंने? कहा बहुत अच्छा। और उसने कह दिया न मैं रागी हूं, न मैं विरागी हूं, सारी उपाधियों से रहित हो गया। पहले तो उन्होंने चर्चा कर दी, उन्हें कहा न मैं रागी हूं और न मैं विरागी, कैसा हूं? कहा सारी उपाधियों से, जब उपाधि नहीं तो रागी विरागी कहां से होगा? तो ऐसा मैं हूं, और वही मैं हूं, वही तुम हो, तत्त्वमसि। और कहा अकार उकार मकार ओम तत्त्वमसि, ऐसा उसने बोला। जब उसने ऐसा कहा तब जो है बचा एक चौथा, चौथी दिशा से आया। उसने कहा ठीक आप लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, अब हमारा भी अनुभव सुन लो। कहा सुनाओ। कहने लगे अकार उकार मकार और इनके ही लेकर के सारे लोक कल्पित किए, लेकिन अकार उकार और मकार जब इनको जो है उच्चारण किया, और उच्चारण करने पर इससे जो है मन ध्वनि हुई, और ध्वनि हुई और ध्वनि जब लय भाव को प्राप्त हुई, अकार उकार मकार और उसकी ध्वनि जब लय भाव को प्राप्त हुई, तो लय में जो अवशिष्ट बचा, क्यों लय किसी न किसी आश्रय में होगा। तो लय का जो आश्रय ऐसा जो नांद, और वो नांद जो है स्वरूप, उसी नांद की धुनी में मैं मस्त रहता हूं, उसी नांद रूप में मैं मस्त रहता हूं। तो जहां पर अकार उकार मकार इनका भी लय हो जाता है, ऐसा जो इनका आश्रय है सर्वथा उस आश्रय में मैं मस्त रहने वाला हूं, तो क्या हो गया है? तो कहने लगे वहां पर तो क्या शेष बचा? तो कहा अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म मैं ही, मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म नहीं। ये उसने सब सुनाई चार साधु। तो ये तो क्या है, कल्पना ही। सुनाया है या नहीं सुनाया बात अलग है, लेकिन एक कल्पना है। कल्पना किस लिए है? एक कल्पना को काटने के लिए दूसरी कल्पना की जरूरत पड़े। अब जो है कल्पना होनी चाहिए कैसे, तो उस कल्पना का नियम है। अनियमित कल्पना कभी भी कल्पना को काटने में समर्थ नहीं। कल्पना भी नियत होना चाहिए। शास्त्र भी एक सीमा तक कल्पना ही है, लेकिन वो शास्त्र की कल्पना नियत कल्पना है। शास्त्र की कल्पना कैसी है? नियत कल्पना। इसलिए आप गीता में सुनते कभी कभी लग जाता है कि अरे बाबा जी क्या बोल रहे, गीता में क्या सुना? त्रैगुण्य विषया वेद। क्या कहा? त्रैगुण्य विषया वेद। वेद भी जो चर्चा कर रहे हैं वो कैसे करते हैं? कहा तीनों गुणों को लेकर के चर्चा कर। तो क्या कहा जिनसे? निस्त्रैगुण्य भवार्जन। तो वहां तक वेद की भी आवश्यकता है, क्योंकि वेद वह नियम करता है। तो वहां नियत है वेद, और वहां नियतता होने तक तहां तक तो ठीक, लेकिन जहां सबका लय हो जाता है वहां लोक वेद देव इन सबका लय होता, वो कहां होता है? तब उसके लिए कहा आदित्य के बाद, उस प्रकाश के बाद है, उस प्रकाश में इनका सबका जलना हो जाता है। आदित्य लोक की जो स्थिति की मकार उपासना को लेके, और फिर जो है उस आदित्य के द्वारा मह नाम की व्याहृति, और मह नाम की व्याहृति में पहुंचते ही फिर वहां कुछ भी शेष नहीं रहता। तो क्या रहता? तो फिर वही उसी के लिए कह दिया पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूरात। क्या मतलब? कहा उसी में सब जो है निकला, उसी में प्रवेश कर गया, लेकिन निकलने पर भी प्रवेश करने पर भी क्या हुआ? कहा वो जैसे का तैसा रहा। इसका मतलब क्या? जो भी सृष्टि, सृष्टि की स्थिति और लय, वो सारा आश्रय वही है। उसमें कभी भी सृष्टि के होने पर, सृष्टि के लय होने पर, सृष्टि की स्थिति होने पर किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। इस प्रकार से जब इन व्याहृतियों के द्वारा हम जब ओम की उपासना करते हैं और नियत कल्पना के द्वारा नियत रूप से चलते हैं, तो धीरे धीरे हम उस महानाम की व्याहृति में पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने पर इन सबका लय हो जाता है, वहीं पर हमें स्वराज्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा संकेत है, आगे चर्चा करें।